कार्यक्रम सत्यवचन में आप सभी का स्वागत है। श्रोताओं, इन दिनों हम बाइबल की 10वीं पुस्तक दूसरा शमूएल का अध्ययन कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि आपको हमारे इन अध्ययनों से अवश्य लाभ प्राप्त हो रहा होगा। श्रोताओं, इससे पहले कि आज का अध्ययन हम शुरू करें, आइए सुनते हैं एक मधुर गीत।
कल के भरोसे पर ना रहना, कल का भरोसा कभी ना करना, कल क्या होगा किसी ने न जाना, किसी ने न जाना। जहाँ से आया वहीं जाना है, जिसने दिया है उसी ने लिया है। जहाँ से आया वहीं जाना है, जिसने दिया है उसी ने लिया है। तेरा ये जीवन उसकी अमानत, इस पर ना नाज करना। कल के भरोसे पर ना रहना, कल का भरोसा कभी ना करना, कल क्या होगा किसी ने न जाना, किसी ने न जाना। कल के भरोसे पर ना
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं आशा करता हूँ कि आप सब परमेश्वर की दया से कुशल पूर्वक हैं और आज भी परमेश्वर के वचन में से सीखने के लिए प्रतिदिन की तरह तैयार बैठे हैं। मित्रों, मैं आप सबका स्वागत करता हूँ जो आज फिर से इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए बैठे हुए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम इन दिनों शमूएल की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं, जो दूसरा शमूएल की पुस्तक है। और पिछले अध्ययन में हमने देखा था कि अब्नेर ने शाऊल के पुत्र इशबोशेत को शाऊल के स्थान पर राजा बनाया, जबकि दाऊद यहूदा का राजा बना। तब अब्नेर और योआब इस विभाजन को सुलझाना चाहते थे, अतः उन्होंने अपने अपने 12 योद्धा खड़े किए, परंतु परिणाम घमासान हुआ और गृह युद्ध समाप्त नहीं हुआ, वरन योआब का भाई असहेल अब्नेर के हाथों मारा गया। और इस बीच अब्नेर से भारी भूल हुई, उसने शाऊल की रखेल रिस्पा को अपना लिया, और जिस पर इशबोशेत ने रोष प्रकट किया तो वह दाऊद से जा मिला और उसे समस्त 12 गोत्रों पर राजा बनने में सहायता की। मेरे मित्रों, हमने देखा कि योआब अपने भाई की हत्या के कारण बदले की आग में जल रहा था। अतः वह हेब्रोन में जाकर अब्नेर से मीठी मीठी बातें करके उसे बाहर ले आता है, क्योंकि हेब्रोन एक शरण नगर था जहां हत्यारे बदला लेने से वर्जित थे। उस शहर के अंदर कोई भी किसी की हत्या नहीं कर सकता था। शहर से बाहर आते ही वह अब्नेर की हत्या कर देता है, जिस पर दाऊद को अत्यधिक दुख होता है और वह योआब को हत्या का दोषी भी ठहराता है। वह अब्नेर को भी मूर्ख कहता है, क्योंकि उसके लिए वह विलाप करता है और कहता है कि कैसा मूर्ख है कि वह मर गया। यहां तक हमने पिछले अध्ययन में देखा था। आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और अध्याय 4 से अध्ययन को आरंभ करेंगे, लेकिन इसके पूर्व आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगे। हमारे जीव तो सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में दिया है, ताकि हम आपके जीवित वचन का अध्ययन कर सकें। इस समय जब हम आपके वचन में से सीखते हैं, हमारी प्रार्थना है कि हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को आप अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें, ताकि जब हम आपके वचन का अध्ययन करें तो आपका वचन हम में से प्रत्येक के जीवन से बोलने और बातचीत करने पाए। हमारी प्रार्थना है उन भाई बहनों के लिए जो निराश हैं, दुखी हैं, बीमार हैं और अनेक प्रकार की समस्याओं से घिरे हुए हैं। प्रभु जी, आप उन्हें उनसे छुटकारा प्रदान करें, उनकी सहायता करें, अपने वचन के द्वारा उनसे बोले और बातचीत करें, ताकि आज के दिन वे आप पर विश्वास रख सकें। आज के इस अध्ययन पर भी हम आपके आशीष मांगते हैं, आप हम सबकी सहायता करें। प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, आज हम दूसरे सामुएल की पुस्तक उसके 4 अध्याय में देखेंगे कि ईशबोशेत की हत्या का वर्णन है, और 5वें अध्याय में भी हम देखेंगे कि इसराइल और यहूदा पर दाऊद का राजा बनने का वर्णन है। इन 2 अध्यायों में हम 2 बातों को देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि शाऊल के पुत्र ईशबोशेत की हत्या। इस अध्याय में इसराइल राष्ट्र की अव्यवस्था का उल्लेख चल रहा है। शाऊल और योनातान की हत्या के बाद आंतरिक युद्ध एवं गृह युद्ध का क्रम चल पड़ा है। यह समय परमेश्वर की प्रजा के लिए हार्दिक कष्टों का समय था। मेरे मित्रों, धर्मशास्त्र का यह भाग प्रायः अनदेखा किया जाता है, परंतु मुझे पूरा विश्वास है कि यह वृतांत 2 कारणों से हमारे लिए लिखा गया है। पहला कारण है हमें प्रभु यीशु मसीह के परिवार की वंशावली देना। दूसरा कारण हमारे सामने एक उदाहरण रखना, जैसा पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया को लिखता है, 1 कुरिन्थियों की पत्री 10 अध्याय उसके 11 पद में। ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थी, और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई है। जी हाँ, ये बातें हमें दी गई कि वे आत्मिकता में हमारी सेवा करें। मित्रों, हम देख चुके हैं कि दाऊद जो यहूदा का राजा बन गया था, उसके विरुद्ध विद्रोह की चिंगारी सुलग रही थी। वह हेब्रोन में बस गया था जो राज्य की दक्षिणी सीमा पर था। अब्नेर ने विद्रोही आत्मा में शाऊल के पुत्र ईशबोशेत को सिंहासन पर बैठा दिया था, परंतु क्योंकि ईशबोशेत ने उसे शाऊल के रखेल को अपने यहाँ ले जाने के कारण झिड़का, इसलिए वह शाऊल के घराने का त्याग करके दाऊद से मिल गया। यह उसकी भूल थी, क्योंकि योआब अपने भाई असहेल की हत्या के बदले की आग में इधर जल रहा था। सेनापति अब्नेर के चले जाने के कारण ईशबोशेत की सेना अशक्त हो गई थी। वह समझ गया था कि वह दाऊद के विरुद्ध अपना राज्य स्थिर नहीं रख पाएगा। अब्नेर की अब हत्या कर दी गई थी, ईशबोशेत क्या करेगा? आइए हम पढ़ते हैं 2 शमूएल 4 अध्याय उसके 1-3 पद में। जब शाऊल के पुत्र ने सुना कि अब्नेर हेब्रोन में मारा गया, तब उसके हाथ ढीले पड़ गए और सब इसराइली भी घबरा गए। शाऊल के पुत्र के 2 जन थे जो दलों के प्रधान थे, एक का नाम बाना और दूसरे का नाम रेकाब था। ये दोनों बेरोतवासी बिन्यामिनी रिमोन के पुत्र थे, क्योंकि बेरोत भी बिन्यामिन के भाग में गिना जाता है। अब बेरोती लोग गितेम को भाग गए और आज के दिन तक वहीं परदेशी होकर रहते हैं। मित्रों ध्यान दीजिए, शाऊल ने बेरोत वासियों को देश निकाला दे दिया था। वे गितेम को भाग गए थे और उनका नगर बेरोत बिन्यामीन के गोत्र के अधीन हो गया था। हम यहाँ पर आगे पढ़ते हैं दूसरा शामुएल के पुस्तक उसके 4:4 में लिखा है, शाऊल के पुत्र योनातान के एक लंगड़ा बेटा था। जब इज़राइल से शाऊल योनातान का समाचार आया तब वह 5 वर्ष का था। उस समय उनकी धाई उसे उठाकर भागी और उसके उतावली से भागने के कारण वह गिर के लंगड़ा हो गया और उसका नाम मपीबोशेत था। मेरे मित्रों, मपीबोशेत एक असामान्य नाम था, परंतु कृपया इसे याद रखें। मपीबोशेत और दाऊद की कहानी ऐसी सुंदर कहानी है जो कभी सुनाई गई हो। वह योनातान का पुत्र था। जब तक वह जीवित रहा वह दाऊद के लिए सदैव खतरा बना रहा, क्योंकि सिंहासन का अधिकारी वही था। क्योंकि वह योनातान का पुत्र था इसलिए दाऊद उसका बाल भी बाका नहीं होने देगा। आगे चलकर हम देखेंगे कि दाऊद ने शाऊल और योनातान के कुटुंबियों को खोजा, घात करने के लिए नहीं परंतु उनके साथ भलाई करने के लिए। दूसरा शामुएल की पुस्तक 4:5-6 में हम पढ़ते हैं, उस बेरोती रिमोन के पुत्र रेकाब और बाना कड़े घाम के समय इशबोशेत के घर में जब वह दोपहर को विश्राम कर रहा था आए और गेहूं ले जाने के बहाने से घर में घुस गए और उसके पेट में मारा। तब रेकाब और उसका भाई बाना भाग निकले। मित्रों, ये दो पुरुष रेकाब और बाना शाऊल के सेना के कनिष्ठ अधिकारी थे। जब उन्होंने सुना कि अब्नेर की हत्या हो गई और दाऊद की शक्ति एवं पराक्रम के बारे में जाना, तब उन्होंने शाऊल के पुत्र इशबोशेत की हत्या का षड्यंत्र रचा। जब इशबोशेत सोता था तब उन्होंने दबे पांव प्रवेश करके उसे मार डाला। मित्रों, यह एक घृणित काम था। उन्होंने सोचा कि ऐसा करके वे दाऊद के अनुग्रह पात्र बन जाएंगे, दाऊद उन्हें इसका अच्छा प्रतिफल देगा, वे दाऊद के साथ शांति स्थापित कर पाएंगे, परंतु यह उनकी बहुत बड़ी भूल थी। दूसरा शामुएल 4:7-8 में हम पढ़ते हैं, जब वे घर में घुसे और वह सोने की कोठरी में चरपाई पर सोता था तब उन्होंने उसे मार डाला और उसका सिर काट लिया और उसका सिर लेकर रातों रात अराबा के मार्ग से चले और वे इशबोशेत का सिर हेब्रोन में दाऊद के पास ले जाकर राजा से कहने लगे, देख शाऊल जो तेरा शत्रु तेरे प्राणों का ग्राहक था उसके पुत्र इशबोशेत का यह सिर है। तो आज के दिन यहोवा ने शाऊल और उसके वंश से मेरे प्रभु राजा का पलटा लिया है। मेरे मित्रों, वे इशबोशेत का सिर लेकर दाऊद के पास पहुंचे, परंतु दाऊद ऐसा काम कभी भी स्वीकार नहीं करने वाला था। दूसरा शामुएल 4:12 में लिखा है, तब दाऊद ने जवानों को आज्ञा दी और उन्होंने उनको घात करके उनके हाथ पांव काट दिए और उनकी लोथों को हेब्रोन के पोखरे के पास टांग दिया। तब इशबोशेत के सिर को उठाकर हेब्रोन में अब्नेर की कब्र में गाड़ दिया। मेरे मित्रों, रेकाब और बाना हत्यारे थे और वह भी राजा के। दाऊद ने उनके इस घृणित काम के लिए उन्हें तत्काल ही मृत्यु दंड दिया। उत्तरी राज्य के 11 गोत्रों को स्पष्ट बोध हो गया था कि उनके पास कोई अगुआ नहीं है और दाऊद से विद्रोह करना एक मूर्खता है। अतः उन्होंने शांतिपूर्वक वार्ता आरंभ की। तब हम आगे देखते हैं कि दाऊद संपूर्ण इसराइल का राजा बनता है। दूसरा शमूएल 5:1 में पढ़ते हैं, तब इसराइल के सब गोत्र दाऊद के पास हेब्रोन में आकर कहने लगे, सुन हम लोग और तू एक ही हाड़ मांस के हैं। मेरे मित्रों, सब गोत्रों ने दाऊद के पास प्रतिनिधि भेजे और कहा, सुन हम लोग और तू एक ही हाड़ मांस के हैं। और यह सच भी है, गृह युद्ध भयानक स्थिति भी ले चुकी है क्योंकि गोत्र आपस में ही लड़ रहे थे। मेरे व्यक्तिगत विचार में इसराइल का सबसे भयंकर युद्ध उनका गृह युद्ध ही था। अतीत को देखा जाए तो वह युद्ध अनावश्यक था। मित्रों, दास प्रथा निश्चय ही उचित नहीं, परंतु उसका निवारण युद्ध की अपेक्षा अन्य साधन से भी होना चाहिए था। जल्दबाजों और नारेबाजों ने उस देश को संकटग्रस्त कर दिया था। मैं तो सब जल्दबाज नारेबाजों के विरुद्ध हूँ, चाहे वे किसी के भी पक्ष में क्यों ना हो। मित्रों, 7 वर्ष गृह युद्ध के पश्चात इसराइल दाऊद के राज में संगठित हुआ और उस महान युग में प्रवेश किया जिसका आनंद कभी लिया गया है। यह युग उस दिन की छाया है जब मसीह राजा राज करने को आएगा। 2 सामुएल 5 अध्याय उसके 2 पद में हम पढ़ते हैं, फिर भूतकाल में जब शाऊल हमारा राजा था तब भी इसराइल का अगुआ तू ही था, और यहोवा ने तुझसे कहा कि मेरी प्रजा इसराइल का चरवाहा और इसराइल का प्रधान तू ही होगा। मेरे मित्रों, यहाँ पर हम देखते हैं कि इसराइल के गोत्रों को यह समझने के लिए कि दाऊद वैध और परमेश्वर द्वारा नियुक्त उनका राजा था थोड़ा विलम्ब हुआ। उन्हें तो बहुत पहले ही यह बात समझ लेनी थी, परंतु वे समझ नहीं पाए थे। हम 2 सामुएल 5 अध्याय उसके 3-5 पद में पढ़ते हैं, लिखा है, सो जब इसराइली पुरनिये हेब्रोन में राजा के पास आए और राजा दाऊद ने उनके साथ हेब्रोन में यहोवा के सामने वाचा बांधी और उन्होंने इसराइल का राजा होने के लिए दाऊद का अभिषेक किया। दाऊद 30 वर्ष का होकर राज्य करने लगा और 40 वर्ष तक राज्य करता रहा। 7.5 वर्ष तक तो उसने हेब्रोन में यहूदा पर राज्य किया और 33 वर्ष तक यरूशलेम में समस्त इसराइल और यहूदा पर राज्य किया। मेरे मित्रों, इसराइल समृद्धि और विस्तार के युग में प्रवेश करने वाला था। दाऊद ने जब इसराइल पर राज्य करना आरंभ किया तब वह 30 वर्ष का था, अर्थात एक युवक ही था। उसने यहूदा के गोत्र पर हेब्रोन से 7.5 वर्ष तक राज्य किया और संपूर्ण इसराइल पर उसने यरूशलेम से 33 वर्ष तक राज्य किया। इस प्रकार दाऊद का कुल राज्य काल 40 वर्ष 6 महीने था। मेरे मित्रों, हम देखते हैं कि दाऊद यरूशलेम को राजधानी बनाता है। ध्यान दीजिए, इसराइल को संगठित करने का दाऊद का प्रथम चरण था। इसराइल की राजधानी हेब्रोन से हटाकर वह यरूशलेम में रखेगा। 2 सामुएल 5 अध्याय उसके 6 और 7 पद में लिखा हुआ है, तब राजा ने अपने जनों को साथ में लिए हुए यरूशलेम को जाकर यबूसियों पर चढ़ाई की जो उस देश के निवासी थे। उन्होंने यह समझकर कि दाऊद यहाँ बैठ न सकेगा उससे कहा, जब तक तू अंधों और लंगड़ों को दूर न करे तब तक यहाँ बैठने न पाएगा। तो भी दाऊद ने सियोन नाम गढ़ को ले लिया, वही दाऊदपुर भी कहलाता है। मेरे मित्रों, यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ भी ऐसे मनुष्य थे जो दाऊद को कम समझते थे। वह एक महान सेनानायक था, एक राजनेता था, एक राजा था और सबसे अधिक वह एक परमेश्वर का जन था। मेरे मित्रों, सियोन दाऊद का चयनित स्थान था। इसे अपनी बाइबल में आप लिख लें। मैंने तो अपने बाइबल में इसे लिख लिया है। आपको उस देश में जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ हो या ना हुआ हो तो आप देखेंगे कि वह उस नगर का ऊंचा स्थान है। दाऊद के युग में यरूशलेम नगर किद्रोन घाटी में था। उस नगर की शहरपना आज पुरातत्व की खुदाई में मिल रही है, परंतु आज का यरूशलेम सियोन पर्वत पर बसा है जहां दाऊद का महल बाद में बनाया गया था। मित्रों, सियोन पर्वत के नीचे मंदिर बनाया गया था और यह दाऊद का चुनाव था। यरूशलेम दाऊद का नगर था। अपने अनेक भजनों में दाऊद ने सियोन पर्वत और यरूशलेम का उल्लेख किया है। जहां तक मेरी समझ है, मैं स्पष्ट कहता हूं कि वह नगर मेरी पसंद का नहीं है। मैं अनेक बातों में दाऊद का अनुमोदन करता हूं, परंतु यरूशलेम के विषय में नहीं। पिलातुस उस नगर से घृणा करता था। वह पर्वों के समय वहां जाने पर बाध्य था और यही कारण था कि वह यीशु के बंदी बनाए जाने के समय में भी वहां पर था। वह फसह के पर्व का समय था। वह वहां व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए गया था और फसह के बाद कैसरिया को लौट आया था। मेरे मित्रों, कैसरिया भूमध्य सागर के तट पर बसा था। मैं यूं कहूं कि यरूशलेम की तुलना में कैसरिया को मैं पसंद करूंगा, परंतु जहां तक बाइबल का संबंध है, यरूशलेम ही इस पृथ्वी की महान राजधानी होगा। मुझे तो यह जानकर प्रसन्नता होती है कि मैं वहां संपूर्ण अनंत काल नहीं रहूंगा। मैं तो नए यरूशलेम में रहूंगा और उसकी सुविधाएं सांसारिक यरूशलेम से कहीं अधिक महान होगी। मेरे मित्रों, हमें यहाँ ध्यान इस बात पर देना है कि दाऊद ने यरूशलेम नगर नहीं, पर्वत की चोटी पर अधिकार किया था। उस सुविधाजनक स्थान से वह यबूसियों के इस नगर को अंततः जीत पाया। इससे पहले कि यबूसी समझ पाते कि युद्ध छिड़ गया है, वे पराजित हो गए थे। हम दूसरा शामिल 5 अध्याय उसके 8 पद में पढ़ते हैं, उस दिन दाऊद ने कहा, जो कोई यबूसियों को मारना चाहे उसे चाहिए कि नाले से होकर चढ़े, और अंधे और लंगड़े जिनसे दाऊद मन से घिन करता है उन्हें मारे। इससे यह कहावत चली कि अंधे और लंगड़े भवन में आने न पाएंगे। मेरे मित्रों, यह पद वाद विवाद का विषय है। कुछ टीकाकारों का कहना है कि दाऊद यहाँ यबूसियों की निंदा कर रहा है, और कुछ लोगों का कहना है कि इसका अर्थ गहरा है, क्योंकि धर्मशास्त्र में इसकी व्याख्या नहीं है, हम इसका अर्थ नहीं समझ सकते हैं। दूसरा शामिल 5 अध्याय उसके 9 पद में हम पढ़ते हैं, और दाऊद उस गढ़ में रहने लगा और उसका नाम दाऊदपुर रखा, और दाऊद ने चारों ओर मिलो से लेकर भीतर की ओर शहर पनाह बनवाई। दाऊद ने पहले सियोन पर्वत पर अधिकार किया, फिर उसे अपना गढ़ बनाया, उसके बाद उसने नगर को जीता और शहर पनाह बनाई। हम दूसरा शामिल 5 अध्याय 10 से 12 पद में पढ़ते हैं, और दाऊद की बड़ाई अधिक होती गई, और सेनाओं का परमेश्वर यहोवा उसके संग रहता था, और सोर के राजा हिराम ने दाऊद के पास दूत और देवदारू की लकड़ी और बढ़ई और राजमिस्त्री भेजे, और उन्होंने दाऊद के लिए एक भवन बनाया, और दाऊद को निश्चय हो गया कि यहोवा ने मुझे इसराइल का राजा करके स्थिर किया और अपनी इसराइली प्रजा के निमित्त मेरा राज्य बढ़ाया है। मेरे मित्रों, परमेश्वर उसके साथ था और वह बढ़ता गया। सूर के राजा हिराम ने स्वीकार किया कि दाऊद एक असाधारण व्यक्ति था, अतः उसने दाऊद के साथ ऐसा प्रबंध किया कि मंदिर निर्माण के लिए सामग्री एवं कर्मी अर्थात कार्य करने वालों का उपलब्ध करवाया। हम दूसरा शामिल 5 अध्याय उसके 13 पद में पढ़ते हैं, जब दाऊद हेब्रोन में आया तब उसके बाद उसने यरूशलेम की और रखेलियां रख ली और पत्नियां बना ली और उसके और बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। मेरे मित्रों, यहां पर आप ध्यान दीजिए, यह तथ्यों का ब्यौरा है। परमेश्वर ने दाऊद के कामों पर स्वीकृति की मुहर नहीं लगाई थी। हम देखेंगे कि परमेश्वर बहुपत्नी विवाह का अनुमोदन नहीं करता है। दाऊद के पुत्र सुलेमान के इस काम के कारण राज्य का विभाजन हुआ था और अंत में बेबीलोन की बंधुआई आई। क्यों? क्योंकि दाऊद और सुलेमान राजा थे और राष्ट्र के अगुआ भी थे। उनके काम गलत थे, और कौन कहता है कि उनके काम गलत थे? परमेश्वर कहता है। यह जगत तो उसी का है और वही नियम भी निर्धारित करता है। आप उन्हें पसंद करें या ना करें, वे भले के लिए ही हैं। मेरे मित्रों, परमेश्वर ने हमारी सृष्टि ही नहीं की, उसने हमारे जीवन के लिए नियम एवं व्यवस्थाएं भी बनाई है कि मानव जाति को परम आनंद एवं आशीष प्राप्त हो। दूसरा शामिल 5 अध्याय 14 से 16 पद में हम पढ़ते हैं, उसके जो संतान यरूशलेम में उत्पन्न हुए उनके ये नाम हैं, अर्थात शम्मो, शोबाब, नातान, सुलेमान, इभार, एलुशु, नेबेक, यापी, एलिशमा, एलियादा और एलिपेलेथ। इन पदों में व्यक्त 4 पुत्रों में से प्रथम 2 के बारे में तो मुझे कोई भी जानकारी नहीं है, परंतु नातान और सुलेमान के बारे में मैं अवश्य कुछ जानता हूँ। नातान के वंश से यीशु की माता मरियम थी और सुलेमान से मरियम का पति यूसुफ था। इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह नातान और सुलेमान दोनों ही से दाऊद का वैधानिक उत्तराधिकारी था। यही कारण है कि यह जानकारी यहाँ दी गई है। मित्रों, हम आगे देखते हैं, पलिस्तियों से युद्ध। दूसरा शामिल 5 अध्याय उसके 17 और 18 पद में हम पढ़ते हैं, जब पलिस्तियों ने यह सुना कि इसराइल का राजा होने के लिए दाऊद का अभिषेक हुआ है, तब सब पलिस्ती दाऊद की खोज में निकले। यह सुनकर दाऊद गढ़ में चला गया। तब पलिस्ती आकर रापाइम नाम तराई में फैल गए। मेरे मित्रों, शाऊल से भागते समय दाऊद पलिस्तियों के देश में चला गया था, जहां केवल अकीश उसे अपना विश्वास पात्र समझता था। अब दाऊद अपने देश लौट आया है और इसराइल का राजा भी बन गया है, तो पलिस्ती उसे मारने के लिए निकलते हैं। दूसरा शामिल 5 अध्याय 19 से 21 पद में हम पढ़ते हैं, तब दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं पलिस्तियों पर चढ़ाई करूं? क्या तू उन्हें मेरे हाथ कर देगा? यहोवा ने दाऊद से कहा, चढ़ाई कर, क्योंकि मैं निश्चय फलिस्तियों को तेरे हाथ कर दूंगा। तब दाऊद बाल पारासीम को गया और दाऊद ने उन्हें वहीं मारा। तब उसने कहा, यहोवा मेरे सामने होकर मेरे शत्रुओं पर जल की धारा की नाई टूट पड़ा है, इस कारण उसने उस स्थान का नाम बाल पारासीम रखा। वहां उन्होंने अपनी मूर्तों को छोड़ दिया और दाऊद और उसके जन उन्हें उठा ले गए। मेरे प्रिय मित्रों, पराजय के कुछ समय बाद पलिस्ती फिर युद्ध करने के लिए आए और परमेश्वर ने उन्हें फिर दाऊद के हाथों में कर दिया। मेरे मित्रों, हम देखते हैं कि दाऊद के संपूर्ण राज्यकाल में पलिस्तियों के साथ शांति नहीं रही थी, अर्थात ये हमेशा ही लड़ते रहे। एक अद्भुत और महान बात हम यहाँ पर देखते हैं कि दाऊद परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना चाहता है। यद्यपि उसने कई पत्नियां रखी हैं जो परमेश्वर के विरुद्ध में है, फिर भी वह परमेश्वर से अगुवाई चाहता है कि वह लड़ने के लिए जाए या ना जाए। मेरे मित्रों, यहाँ पर एक बहुत विशिष्ट बात हमारे सीखने के लिए है कि हम चाहे कोई भी क्यों ना हो, यदि हम परमेश्वर के पास में आते हैं और अपने आप को परमेश्वर के निकटता में रखते हैं तो निश्चय ही परमेश्वर हमारी सहायता करता है। इसका मतलब यह नहीं कि हम पाप में डूबे रहें और परमेश्वर से सहायता मांगे। परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के निकटता में रहकर उसमें बढ़ते चले जाएं। दाऊद के जीवन में भी ऐसी ही बातों को हम देखेंगे, लेकिन इसका कारण भी हम देखेंगे कि परमेश्वर उसके इस कार्य के लिए उसे दंड देगा। मित्रों, यहाँ पर हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। मुझे विश्वास है कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अपने जीवन में नई बातों को सीखा है और अपने आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए एक कदम आगे बढ़ाया है। प्रभु आपके जीवन में और भी अधिक आशीषों को दे, ताकि आप परमेश्वर के निकटता में रहकर अपने जीवन को बिता सकें। प्रभु आप सबकी सहायता करें।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान, गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान, ओ गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान, गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान। भजन करो सब उसके, वो है सबसे अधिक महान, भजन करो सब उसके, वो है सबसे अधिक महान। गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान, गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान, ओ गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान, गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान। जीवन अपना देकर हमको जीवन राह दिखाई, जीवन अपना देकर हमको जीवन राह दिखाई, शरण में उसने लेकर हमको पाप से मुक्ति दिलाई, शरण में उसने लेकर हमको पाप से मुक्ति दिलाई। यीशु राजा सबसे।